अच्छी बातों की नसीहत करते हो, तन्हौना अनिल मुनकरे और बुरी बातों से रोकते चले जाते हो, वो तोमिनूना बिल्लाह है और अल्लाह पर सच्चा ईमान रखते हो। वलो आमना अहलुल किताबे, काश अहले किताब भी अगर ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर था, منهمل مومنون واكثرهم الفاسقون, کچھ ان میں مومن بھی ہیں لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قوموں کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے, اور کوئی قوم بھی ان دو صفات کے بغیر لمبے عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتی. بظاہر اس میں یہ تعلیم ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرو, دوسروں کو بری باتوں سے روکو اور اچھی باتوں کا حکم دو, لیکن اس تاریخ کے اندر, اس حکم کے اندر ایک مخفی حکم ہے جس کا اس جماعت کی ذات سے بھی تعلق ہے جو اچھی باتوں کا حکم دیتی ہے اور بری باتوں سے روکتی ہے. اور قرآن کریم نے دوسری جگہ اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے پہلی قوموں کی ہلاکت کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ انہوں نے یہ کام چھوڑ دیے تھے. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف تمثیلات کے رنگ میں اس بات کو واضح فرمایا کہ وہ قومیں جو نیک باتوں کا حکم دینے سے رک جایا کرتی ہیں اور بری باتوں سے روکنے سے رک جایا کرتی ہیں وہ بالآخر ہلاک ہو جایا کرتی ہیں. ایک کشتی کی مثال دے کر آپ نے واضح فرمایا کہ دیکھو اگر ایک ہی کشتی میں ایسے لوگ سوار ہوں جو نیک ہوں اور بچنا چاہتے ہیں, اور ایسے لوگ بھی سوار ہوں جو بد ہوں اور جن کے مقدر میں ہلاکت لکھی ہو, اگر وہ ہلاک ہونے والے کشتی میں سوراخ کر دیں تو وہ لوگ جن کو بچنا چاہیے جو نیک ہیں وہ ان کو بعد نہ رکھیں اور ان کو سمجھائیں نہیں, تو جب کشتی ڈوبے گی تو پھر نیک اور بد میں فرق نہیں کرے گی. بہت ہی ایک عظیم الشان طرز بیان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر معاشرہ بد ہو رہا ہو, اگر ماحول خراب ہو رہا ہو اور چند نیک لوگ یہ سمجھیں کہ ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لوگ تباہ ہوتے ہیں تو تباہ ہو جائیں, ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب قومیں تباہ ہوا کرتی ہیں تو اس وقت پھر نیک و بد کی تمیز نہیں رہا کرتی. بعض عذاب ایسے ہیں جیسا کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے جو نیک و بد میں تمیز نہیں کرتے, وہ قومی عذاب ہوتے ہیں. اس لیے زندہ رہنے والی قوموں کے لیے ایک مجبوری ہے, اگر وہ زندہ رہنا چاہتی ہیں تو ان کا فرض ہے اپنی بقا کی خاطر وہ نیک کاموں کی نصیحتیں کرتی چلی جائیں اور برے کاموں سے روکتی چلی جائیں, اور سارے معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری ان چند لوگوں پر ہوتی ہے جن کو خدا تعالیٰ اس کام کے لیے چن لیا کرتا ہے. تعاملون بالمعروف و تنہون عن المنکر میں دوسری بات قابل توجہ یہ ہے کہ اس میں کسی مذہبی عقیدے کی تفریق کا کوئی ذکر نہیں. یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ لوگ کسی خاص عقیدے کی تبلیغ کرتے ہیں اور بعض خاص عقیدوں سے روکتے ہیں, بلکہ اصلاح معاشرہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے, ان بدیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو ہر مذہب کے نقطۂ نگاہ میں الا ماشاءاللہ بعض بگڑے ہوئے مذاہب کے بعد تصور بگڑ جاتے ہیں, لیکن بالعموم ہر مذہب کے نقطۂ نگاہ میں وہ بدیاں کہلاتی ہیں, ان باتوں کا حکم دیتے ہیں جو اکثر مذاہب کی روح سے نیکیاں کہلاتی ہیں, یعنی انسانی سطح کی نیکیاں اور انسانی سطح کی بدیاں, حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی نیکیاں اور حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی بدیاں. ان امور میں تمام قوموں کے مسائل مشترک ہوتے ہیں, ان کے مقاصد مشترک ہوتے ہیں, ایک ہی وطن میں مختلف مذاہب کے ماننے والے بس رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ قدرے مشترک ہے جو ہر انسان کے درمیان پائی جاتی ہے, اور مذہب کا اختلاف حائل نہیں ہو سکتا اس بات. اس لیے نیک بات کی نصیحت کرنے کا جو ارشاد فرمایا امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے, اس پر کوئی اعتراض یہ نہیں اٹھ سکتا कि तुम्हारे तो अकायद मुख्तलिफ हैं, मसलन हिंदू उनको ये नहीं कह सकते, ईसाई उनको ये नहीं कह सकते। दुनिया के किसी मजहब का ताल्लुक रखने वाला कोई माकूल इंसान उनको ये नहीं कह सकता कि तुम हमें क्यों कहते हो कि सच बोलो और झूठ ना बोलो, तुम क्यों हमारी फिक्र करते हो कि हम रिश्वत लेते हैं और हमें रिश्वत से बात रखने की कोशिश करते हो, तुम क्यों हमारे पास आते हो दर्दमंद दिलों के साथ कि दुनिया पर जुल्म करना छोड़ दो और हमें जुल्म से बाज रहने की नसीहत करते हैं। तुम्हारा मजहब और है और हमारा मजहब और है, तुम्हारा अकीदा और है और हमारा अकीदा और है, कोई माकूल आदमी ये नहीं कह सकता। दुनिया के पर्दे पर देहरिया भी ये नहीं कह सकता, क्योंकि देहरिया के अंदर भी खुदा तआला ने एक इनबिल्ट अंदरूनी निजाम नेकी और बदी की तमीज का रख दिया है। बात बातें ऐसी हैं जिनको दुनिया की हर कौम बदी समझती है, बात बातें ऐसी हैं जिनको दुनिया की हर कौम नेकी समझती है। इसलिए ये वो नसीहत है जिसका ताल्लुक ना मजहब के इख्तलाफ से है, ना मजहब के मानने वालों और ना मानने वालों के दरमियान ये कोई फर्क करता है। ये निजाम ऐसा है जो आलमी निजाम है नसीहत का, और इसकी जरूरत बहुत है। अगर ये निजाम मिट जाए तो जैसा कि मैंने बयान किया, कुरान करीम मिसालों पर मिसालें देता है पुरानी कौमों की जो इस वजह से हलाक हो गई कि उन्होंने नेक बातें कहना छोड़ दिया था और बद बातों से रोकना छोड़ दिया था। इसका दूसरा असर जैसा कि मैंने पहले बयान किया था कौमों के अंदरूनी हालात से भी होता है। वो लोग जो दूसरों को नसीहत करते हैं उसका एक रद्द अमल उनकी जात पर जाहिर होता है, और ये हो नहीं सकता कि कोई इंसान अल्लाह पर ईमान लाने वाला हो, ये शर्त खुदा ने साथ रख दी है, और जानता हो कि खुदा मेरे जाहिर को भी देख रहा है और मेरे बातिन को भी देख रहा है, और फिर ऐसी नसीहतें करे कि खुद उन पर अमल ना करता हो और नसीहत करते वक्त उसकी चरका ना लगे, नसीहत करते वक्त उसका जमीर उससे काटे ना, ये हो नहीं सकता। एक देहरिया के लिए तो मुमकिन है, लेकिन खुदा को मानने वाला जो अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखता हो और जानता हो कि वो आलिमुल गैब व शहादा है, उससे ये हो नहीं सकता कि वो नसीहत करे और अंदरूनी कमजोरी की तरफ मुतवज्जे ना हो। इसलिए कौमों की अंदरूनी इस्लाह के लिए और अंदरूनी बका के लिए भी बहुत जरूरी है। वो लोग जो नसीहतों से रुक जाया करते हैं उनके रुकने में भी बसा औकात ये वजह शामिल होती है कि वो बदियां करना चाहते हैं, बाद मुआशरती बुराइयों में मुबतला होना चाहते हैं, और जानते हैं कि अगर हमने रोका लोगों को तो अचानक हम उनके सामने आ जाएंगे और फिर उन बुराइयों में खुद मुलव्वस नहीं हो सकेंगे। बैरूनी मुल्कों में मैंने मुशाहदा किया कि बाद अहमदी इसलिए निजामे जमात से अलग होकर खामोश हुए कि वो बात बदियां करनी चाहते थे, और इसलिए वो गैरों को नसीहत नहीं करते थे कि जानते थे कि हमारे अंदर ये कमजोरियां हैं, बल्कि बिल इरादा करना चाहते हैं। तो चूंकि बदी के आखिरी मुकाम पर नहीं थे, पहला कदम उठ रहा था, इसलिए मुनाफत करने की उनमें जरूरत नहीं थी, यानी इसमें एक नेकी भी शामिल थी, ये कदम उठाना चाहते थे लेकिन बैक वक्त अपने नफ्स के चिरकों से बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये तरीके इख्तियार किया कि खामोश हो गए। और बहुत सी जगह आप ये मुशाहदा करेंगे कि ऐसा वाकया होता चला जा रहा है हमारी सोसाइटी में, और जो नेक नसीहत करता है अगर उसके अंदर कमजोरियां हैं भी तो रफ्ता रफ्ता दूर होने लगती है, क्योंकि नेक नसीहत के नतीजे में एक अंदरूनी निजाम दिल की तरफ से हमलों का निजाम शुरू हो जाता है। और अमरे वाकया यह है कि बैरूनी नसीहत से बहुत ज्यादा ये अंदरूनी नसीहत का निजाम कारगर हुआ करता है, और ये जिद्दोजहद जमीर को जिंदा रखती है। जिन कौमों का जमीर ना मरे उनके मुतल्लिक जिंदगी की जमानत दी जा सकती है, जिनका जमीर मर जाए उनके लिए जिंदगी की कोई जमानत नहीं। तो नसीहत का निजाम बावजूद इसके कि कमजोरियां हों ये जिंदगी की जमानत है, और मुनाफ़त को दूर करने के लिए एक अजीम शान निजाम है। लेकिन बाद का बाद लोग ये ख्याल करते हैं कि हम चूंकि कमजोर हैं, हम बदियों में मुलव्वस हैं, इसलिए हमें नसीहत नहीं करनी चाहिए। और बहुत से लोगों को ये देखा गया है, बाद बैत करने में इसलिए कतराते हैं, वो कहते हैं हमें समझ तो आ गई है लेकिन हम बड़े कमजोर हैं और अपनी कमजोरियों पर निगाह करके इस ऐद बैत को निभा नहीं सकते और हमारा जमीन हमें शर्मिंदा करेगा। और बाद लोग तबलीग से इसलिए बाज रहते हैं कि हमारे अंदर अपनी कमजोरियां हैं, हम किस मुंह से दूसरों को बुलाएं। चुनाचे हजरत मिर्जा सुल्तान अहमद साहेब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के विसाल के बहुत बाद बैत की, जबकि जिंदगी में ईमान ले आए थे और अपने बेटे मिर्जा अजीज अहमद साहेब को आपने खुद नसीहत की कि बैत कर लो, और ईमान लाने के बावजूद बैत नहीं करते थे। जब पूछा गया, बाल दोस्तों ने पूछा, तो उन्होंने कहा मैं जानता हूं मेरा बाप सच्चा है, मैं तो उस घर का पला हुआ हूं, लेकिन मेरे अंदर कमजोरियां हैं और मेरा नफ्स मुझे शर्मिंदा करता है कि तुम इस काबिल नहीं कि इस अजीम बाप की बैत कर सको। तो ये भी एक ख्याल पैदा हो जाता है, लेकिन अमरे वाकया ये है कि ये मुनाफ़त नहीं है। मुनाफ़त एक और चीज का नाम है, मैं उसकी वजाहत अभी करूंगा। हर इंसान कुछ कमजोरियां अपने अंदर रखता है और कोई इंसान भी कामिल नहीं, सवाए अंबिया अलैहिस्सलाम के, जिनको मासूमियत अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है क्योंकि खुदा ताला ने उनको नमूना बनाना होता है। और उन मासूम अंबिया में से सबसे ज्यादा मासूम हजरत अब्दस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, क्योंकि वो जुमला नबियों के लिए भी एक मॉडल थे। ये तो एक खास खुदा के मुकद्दस और बरगजीदा तबके का हाल है कि वो मासूम हैं, लेकिन खुदा के खास फसल के नतीजे में अपनी ताकत की बिना पर नहीं। बाकी इंसान किसी भी मुकाम पर खड़ा हो, वो मासूम अनिल खता करार नहीं दिया जा सकता। बस अगर इसे मुनाफ़त समझा जाए कि एक इंसान कमजोर हो, कुछ कमजोरियां अपने अंदर रखता हो और इसके बावजूद लोगों को नसीहत करे, तो फिर तो ये आयत करीमा सवाए अंबिया के किसी के ऊपर भी सादिक नहीं आएगी। सिर्फ नबी ही हैं जो जुरत के साथ ये कह सकते हैं कि हम मुनाफिक नहीं हैं, हमारा जाहिर और बातिन 100% एक है और हमें खुदा ने मामूर फरमाया है, इसलिए हम लोगों को नसीहत करते हैं। और अकेला नबी अगर ये काम शुरू करे तो दुनिया की काया पलट ही नहीं सकती। बड़ी बड़ी कौमों को उसने मुखातिब करना होता है, बड़े 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 मुआनिद लोगों को उसने मुखातिब करना होता है, जो नसीहत के बदले में नहायत संगीन सजाएं तजवीज कर रहे होते हैं। कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला उन्हें अकेला मैदान में छोड़ दे और उनके साथियों पर ये फरीजा आयद ना करे। इसलिए तारीख अंबिया बताती है कि ईमान लाने वाले तमाम जान और तमाम ताकत के साथ, तमाम खुलूस के साथ अंबिया की मदद के लिए हाजिर हो जाया करते हैं, सब कुछ पेश कर देते हैं। मन अंसारी इल्लाह की आवाज उठती है और मुकाबले पर आवाज उठती है नाम अंसारी है। तो फिर नसीहत के साथ क्या मुनाफ़त का भी ताल्लुक है, ये सवाल उठता है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दरअसल हकीकी आरिफ बिल्ला थे और तमाम इरफान का चश्मा आपसे फूटता था, आपने मुनाफिक की जो तारीफ फरमाई उसमें इस फर्क को जाहिर फरमा दिया। मुनाफिक वो नहीं है जिसके अंदर कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों पर शर्मिंदा है, खुदा के हजूर गिरिया उजारी करता है, उससे माफिया मांगता है, कोशिश करता है कि ये कमजोरियां दूर हो जाएं, और इतने सच्चे दिल से उनको कमजोरियां समझता है कि गैरों में भी उन कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करता है, वो मुनाफिक नहीं। मुनाफिक वो है जिसके अंदर दिल इरादा धोखा पाया जाए। और मुनाफ़त और इरादे का एक ऐसा साथ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को खूब खोलकर वादे फरमा दिया। आपने 4 इलामतें मुनाफ़त की बयान फरमाई और उन चारों में इरादा पाया जाता है। फरमाते हैं अरबाउन मन कुन्ना फी है कान मुनाफिकन खालिसन व मन फी है खसलतुन मिनहुन्ना कान फी है खसलतुन मिन निफाक हत्ता यदा इजा तुमिना खाना व इजा हद्दता कदबा व इजा आहदा गदरा व इजा हासमा फजरा। कि चार सिफात ऐसी हैं कि अगर वो किसी शख्स में पाई जाए तो वो यानी चारों बयक पर पाई जाए तो वो खालिस मुनाफिक है, उसके अंदर निफाक ही निफाक है यानी निफाक में इखलास रखता है और ईमान का कुछ भी उसमें बाकी नहीं रहता। उनमें से पहली ये है कि जब वो इलाकों में ना खाना जब उसके खुद अमानत की जाती है तो वो अमानत में खयानत करता है, और अमानत से ये मुराद नहीं है कि चंद रुपए रखवा दिए जाएं, कोई सामान रखवा दिया जाए और उसमें कोई खयानत कर जाए। अमानत एक मजहबी इस्तिलाह है जिसका कुरान करीम में जिक्र है, और अमानत से अव्वल मुराद शरीयत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कुरान की इस्तिलाह में। चुनाचे कुरान करीम फरमाता है वाइजा अरजनल अमानत अल समावात वल अर्ज वल जिबाल फबैना यहमिलना वाशफना मिन्हा फहमलहा अल इंसान। कि देखो हमने जब अमानत फर्ज करना चाहिए पहाड़ आसमानों ने भी इनकार किया और पहाड़ों ने भी और जमीन ने भी इनकार कर दिया और खौफ ज्यादा हो गए सारे, तब वो इंसान एक आमिल सामने आया जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अमानत तो एक बहुत वसी मजमून है, और पहली मुनाफ़त की निशानी ये है कि कौमी अमानतें जब सुपुर्द हों उनमें को खयानत करे। और इस मुल्क में बहुत से ऐसे वाकयात हैं कि कौमी अमानतें हैं मुख्तलिफ सतह की, और नसीहत की का फर्ज है जमात अहमदिया का, अगर वो ईमान लाने वालों में शामिल है तो उनका फर्ज है कि वो नसीहत करें और खुद कौमी अमानत में कभी खयानत ना करें। जब किसी के स्पुर्द कोई काम किया जाता है वो किसी शोबे में उससे तल्लुक रखने वाला काम हो, पुलिस का अफसर हो या वापदा में मुलाजिम हो या किसी और जगह हुकूमत के कारिंदे के तौर पर काम कर रहा हो या कंपनियों में प्राइवेट मुलाजिम हो, तो उस हद तक उसकी अमानत का दायरा बन जाता है जिस हद तक वो काम उसके स्कूल है, और उस हद तक वो अमानत बनती है जिस हद तक शरीयत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे उस बारे में कुछ तवक्को रख रही है। हर दायरे की तवक्कोआत अलग अलग होंगी, लेकिन कोई भी दायरा ऐसा नहीं होगा जहां आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसी अमानत कुछ ना कुछ दखल न रखती हो। बाद मामलात में वो अमानत आपसे तकाजा करेगी कि अगर तुम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन हो जो खुदा के अमीन थे और तुम इस वास्ते से खुदा के अमीन बन जाते तो इन दायरों में अपनी अमानतों की हिफाजत करो, शरीयत जो तुमसे तकाजे करती है उनको पूरा करो। तो जिस शख्स में उस हद तक खयानत पैदा हो जाए जो उसके दायरे से ताल्लुक रखती है, खार रुपया पैसा रखवाया गया हो या ना रखवाया गया हो, सामान स्पुर्द किया गया हो या ना किया गया हो, खा एक उस्ताद के स्पुर्द बच्चे किए गए हो, उस वो भी पूछा जाएगा खुदा के हजूर कि तुमने इस अमानत का हक क्यों अदा नहीं किया, और अगर वो नहीं करेगा तो आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस हद तक वो मुनाफिक बन जाएगा, मुनाफ़िक का एक दाग उसके दिल पर लग जाएगा और दिल का चौथा हिस्सा उसका गायब हो गया, उस बदसाए के नीचे आ गया। इस मुल्क में तो बदकिस्मती से ऐसे बहुत वाकयात हैं, और बकसरत जमात को नसीहत करनी चाहिए, और इस नसीहत के नतीजे में जमात के अपने अखलाक की हिफाजत होगी, क्योंकि जब वो नसीहत करेंगे तो अपने दिल पर गौर करेंगे और शर्मिंदा होंगे अगर उनके अंदर कमजोरियां पाई जाती हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो ना करेंगे तो नसीहत करने वाले को दूसरे के ताने मजबूर कर दिया करते हैं ठीक होने पर। क्योंकि एक और फायदा उसको यह है अंदरूनी निजाम भी उठ खड़ा हुआ है और बेदार हो गया है, और जिनको नसीहत की जाती है वो अदना सा भी दाग देखें तो वो मुकाबले पर ताना देते हैं। और वो चिरका बाल दफा ऐसा काम कर जाता है कि जमीर का चिरका जहां नाकाम हो गया वहां मुखालिफ का चिरका काम कर लेता है। तो कितना अजीम शान हिफाजत का निजाम है जो कुरान और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है, जिससे कौमी किरदार की हिफाजत होती है। यहां तो ये हाल है कि बाज जगह मैं एक दौरे पे गया था तो वहां पता लगा कि ऐसे स्कूल हैं जहां उस्ताद सारा महीना आता ही नहीं और महीने के आखिर पर तनख्वाह लेने के लिए रजिस्टर पर दस्तखत करने के लिए आता है और मॉनिटर बनाए हुए हैं बाज जो आगे बच्चों को पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते अल्लाह बेहतर जानता है। और इस कसरत से ये वाकयात हो रहे हैं कि सारा मुआशरा दुख रहा है, दुखा हुआ है इससे। वो बच्चे कौम के कितनी अजीम शान अमानत हैं उन उसादा के पास जिन्होंने मुस्तकबिल बनाना है कौम। तो बज़ाहिर एक छोटा सा स्कूल मास्टर है जो बाज़ लोगों की नजर में कोई हकीकत नहीं रखता, लेकिन अमरे वाकया ये है कि जब उसके स्कूल कौम के बच्चे हो गए तो उसी नस्बत से उस उस्ताद को अजमत नसीब होती है। अगर वो अमानत का हक अदा करे तो उसी नस्बत से खुदा की नजर में वो अजमत पाता है, और अगर अमानत का हक अदा न करे तो खुदा की नजरों में भी जलील होगा और कौम की नजर में भी मुजरिम होगा। और एक कौमी खुदकशी के मुतरादिफ होगी ये बात कि ऐसे लोगों को समझाया ना जाए और रोका ना जाए नेक नसीहत के जरिए। जमात अहमदिया में मुनाफ़िक़ की कोई भी खसलत नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा काम है सारी दुनिया की इस्लाह करना, कोई मामूली काम तो नहीं। अगर हम मुनाफ़िक़ का शिकार हो जाएंगे तो फिर बाकी क्या रहेगा। ये तो वैसी बात होगी जैसे एक दफा हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, बारिश हो रही थी, कीचड़ था, तो आपने देखा कि एक बच्चा बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। तो हजरत इमाम अबू हनीफा ने उसको कहा कि बेटे जरा आहिस्ता, फिसल ना जाना। वो बड़ा जहीन बच्चा था, फौरन मुड़ा और उसने कहा इमाम साहेब मैं फिसलूंगा तो एक बच्चा फिसलेगा, आप ना फिसल जाना, क्योंकि आप फिसलेंगे तो कौन फिसल जाएगी। कितना अजीम शान जवाब दिया उसने। बस वो जमात जो अमीन मुकर्रर हो गई हो सारी दुनिया की, उसको अपनी इमामतों की हिफाजत का ख्याल ना रहे तो वो क्या रहेगी, बाकी किस तरह दुनिया की इसलाह कर सकेगी। इसलिए इन अमानतों की हिफाजत सबसे ज्यादा अहम और अव्वल फर्ज जमात अहमदिया का है। कोई एक भी इलामत मुनाफिक की आपके अंदर मौजूद नहीं रहनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता है तो उसको दूर करें, और जब आप नसीहत शुरू कर देंगे तो कमजोरियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और बिल इरादा मुनाफिक का तो मैं तब ख्याल भी नहीं कर सकता कि कोई अहमदी इसका मुर्तकिब हो सके। मुनाफिकत की जैसा कि मैंने कहा था दो किस्में नजर आती हैं, एक है मजबूरी की कमजोरियां जिनसे इंसान शर्मिंदा हो और नफ्स उसका उसको जलील करता रहे या खुदा के हुजूर रोए गिरिया उदारी करे, दूर करने की कोशिश करे, और मजबूर समझे अपने आप को कि मैंने दुनिया को नसीहत करनी ही करनी है। ऐसे शख्स को इस्लामी इस्तिलाह में मुनाफिक नहीं कहा जाता, लेकिन जब बिल इरादा काम करता है और अमानत में खयानत करता है तो फिर वो लाजमन मुनाफिक बन जाता है। दूसरी इलामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाई, जब बात करे तो झूठ बोले। और ये इतनी बीमारी बन गई है खुसूसन पसमानदा अकवाम में, इसमें कोई एक मुल्क खास नहीं है, अमूमन पसमानदा अकवाम में झूठ बहुत कसरत से बोला जाता है। और बड़ी कौमें जो हैं उनमें इंफिरादी सतह पर झूठ बहुत कम मिलता है, वो इस कमी को पूरा कर लेती हैं कौमी फितनों के वक्त झूठ बोलने बोलकर, कौमी मसाले के वक्त झूठ से काम लेकर और झूठे प्रोपेगेंडे करके वो अपनी तरफ से तो प्यास बुझा लेती हैं इसकी, लेकिन जहां तक इंफिरादी सतह का ताल्लुक वो बहुत बेहतर है उन कौमों से जिन्हें हम पसमानदा कौमें कहते हैं या तरक्की पजीर कौमें कहते हैं। और इस लिहाज से भी जमात अहमदिया पर अजीम जिम्मेदारी, झूठ को तो जहर कातिल समझना चाहिए, मुनाफ़त का सबसे बड़ा जहर झूठ है। एक इंसान बात करे और झूठ बोल रहा, क्योंकि झूठ का मतलब यह है कि खुदा तआला की हकानियत का इनकार। झूठ बोलने वाली कौमें दुनिया में किसी शोबे में भी तरक्की नहीं किया करते। आपकी आंख जो देख रही है अगर वही हो तो ये सच है, और अगर आपको गलत नजर आ रहा हो तो ये बीमारी है। लेकिन आप देख कुछ और रहे हो और बयान कुछ और कर रहे हो, ये झूठ है। तो जो झूठी कौमें होती हैं उनको आंखों की बीमारियां भी फिर लायक हो जाया करती हैं, उनका विजन बिगड़ जाता है, उनको नजर भी कुछ और आने लग जाया करता है। और ऐसे भी वाक्यात होते हैं कि झूठ बोलने वाला अपने ही झूठ का खुद शिकार हो जाता है, फिर झूठ बोल बोलकर उस झूठ पर ईमान ले आता है और एक लंबे अरसे के बाद समझने लगता है कि वाक्य है। तो नहायत ही खतरनाक और मूलिक बीमारी है झूठ, जो आनबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक एक मुनाफ़त का निशान है। और झूठ अगर कौमों से दूर हो जाए तो बहुत अजीम शान फवायद मिलते हैं। मसलन साइंटिस्ट झूठ के साथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। साइंटिस्ट की तरक्की मबनी है इस बात पर कि खुशफहमियों के पीछे ना चले, अपने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी ना करे, बल्कि जो नजर आ रहा है खा उसके उसकी ख्वाहिशात के बिल्कुल मुखालिफ उसे तस्लीम कर ले। दिल चाहते एक ख्याल आता है, थ्योरी, एक नजरिया डेवलप होता है उसके दिमाग में और वो महसूस करता है मुझे तलाश करने चाहिए, करना चाहिए शवाहिद में ये वाकयतन बात दुरुस्त भी है कि नहीं। अगर वो शवाहिद को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाने की कोशिश करेगा तो ये झूठ है और कुछ भी उसके हाथ नहीं आएगा। अगर वाकयात जिधर उसको ले जा रहे हैं उसके उनके पीछे चलने लगे तो ये सच है और तमाम साइंसी तरक्की की बुनियाद सच्चाई पर है। जहां झूठ दाखिल हो वहां तवामात और जादूगरी और फितने और अहमकाना बातें दाखिल हो जाती हैं और साइंस की दुनिया से इंसान अलग हो जाता है। तो साइंस की दुनिया सच्चाई की दुनिया है और साइंस कहते हैं खुदा ताला की फेली शहादत जो निजाम कायनात की सूरत में हमें मिलती है उसका मुताला। और रूहानियत और मजहब कहते हैं खुदा ताला की कौली शहादत और नजरियात का निजाम और अखलाकियात का निजाम जो हमें उसकी किताबों में मिलता है। तो जो लोग खुदा ताला की फेली शहादत को झुटलाने वाले नहीं बनते उनको ज्यादा तौफीक मिलती है, मिल सकती है कि वो उसकी कौली शहादत को भी ना झुटलाएं। और जो लोग आदी हो जाए झूठ के आम दुनिया की बातों में उनके ऊपर खुदा ताला की किताब का रंग चढ़ ही नहीं सकता। हर कपड़े पर हर रंग तो नहीं चढ़ा करता, पहले एक बुनियादी सफाई हुआ करती है, उसमें से गुजारे बगैर कोई रंग नहीं चढ़ाया जा सकता। तो झूठे लोगों पर शरीयत का रंग नहीं कर सकता, क्योंकि शरीयत नाम है सच्चाई का और कुछ भी वो नहीं पा सकते, ना मारफत, ना इस दुनिया के फवायद, ना आखिरत के फवायद। झूठा कुल्लियतन महरूम रह जाता है, हर शोबे जिंदगी में वो नाकाम होता है और बजाहिर वो फवायद हासिल कर रहा होता है, थोड़े थोड़े अदना फवायद आरजी। लेकिन हकीकत यह है कि कौमी तौर पर अगर किसी ने खुदकुशी करनी हो तो इससे बेहतर कोई इलाज नहीं उसका कि वह झूठ इख्तियार कर ले। तमाम बदियों की जड़ झूठ है और लतीफे के तौर पर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। माओ को बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठे बहलावे नहीं देने चाहिए, झूठी कहानियां नहीं सुनानी चाहिए। माओ की गोदों में सच और झूठ के फैसले अक्सर हो जाया करते हैं। जब माएं कहती हैं लोरी के तौर दिल बहलावे के तौर पर कि तुम चुप कर जाओ हम तुम्हें अभी ये मिठाई ला के देंगी, और जानती हैं कि हम झूठ बोल रही हैं, तो बच्चे के दिल में झूठ इस तरह जागजीन हो जाता है कि जब बड़े होकर उनको नसीहत करती हैं वही माएं कि झूठ ना बोलो तो उनका दिल कहता है कि ये ऊपर की बातें हैं, अंदर की बातें वही हैं जो माँ किया करती थी, और ऊपर की बातें वो हैं जो कहीं कहती है, और झूठे बच्चे झूठी नस्ल पैदा हो जाती है। तो बहुत अहम फर्ज है जमात अहमदिया का कि झूठ के खिलाफ एक जिहाद करें और अपनी सोसाइटी में जिहाद करें, लोगों को भी रोकें झूठ से। उसके नतीजे में अजीम शान रूहानी फवायद हासिल होंगे और दुनियावी तरक्कियात भी इस कौम को अता होंगी। तीसरी इलामत मुनाफिक की यह बयान फरमाई, जब मुआहदा करे तो गद्दारी करे, जब ऐद करे झूठ बोल जाए, गद्दारी कर जाए और ऐद से फिर जाए। और यह एक ऐसी बदी है जिसके नतीजे में हमारे वाकया यह है कि तमाम वो निजाम जो एतबार पर चलते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और हमारी पसमानदा अकवाम या तरक्की पजीर अकवाम की तिजारतों में नाकामी का एक बुनियादी सबब यह है कि वो मोहदे पर पूरी नहीं रहती। मोहदा होता है किसी से कि इस मयार की चीज, इस डायमेंशन की, इस शक्ल की हम तुम्हें देंगे, और जब वो चीज पहुंचती है तो और मयार की, और शक्ल की, और कैफियत की चीज होती है। और बड़ा गहरा नुकसान पहुंचाया है इस बदअहदी ने हमारे माशियात और इक्तसादियात को, जबकि बाज दहरिया कौमें, बाज मुशरिक कौमें इस रात को समझ गई और उन्होंने मुआहदे की पाबंदी करके बहुत अजीम शान फवायद उठाए हैं। जो कहते हैं वही चीज अंदर से निकलती है। तो मुआहदे में, मुआहदे की खिलाफ वर्जी में झूठ भी पाया जाता है, और झूठ के अलावा कुछ जाती फवायद ऐसे होते हैं जिसके नतीजे में इंसान बाप से फिरता है। बदाहर तो झूठ ही की एक किस्म है, लेकिन झूठ से कुछ जायद अमली शक्ल इसमें एक पाई जाती है, इसको बदहदी कहते हैं। और बदहदी बाज दफा शुरू से ही नीयत में दाखिल होती है, बाज दफा मुश्किल हालात इंसान को बदहदी पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन आमदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा यह था कि कभी किसी अहद को आपने नहीं तोड़ा, सख्त तरीन आजमाइश के वक्त भी आपने कभी किसी अहद को नहीं तोड़ा। सारी जिंदगी हमेशा दुश्मन अपने अहद तोड़ते रहे, लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदों की हिफाजत फरमाई है और इसी की तलकीन फरमाई। पर जमात अहमदिया को भी इस बात को मजबूती से पकड़ लेना चाहिए, खा वो ताजर हो, खा वो इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कारखानेदार हो, खा वो मुलाजिम हो। अब मुलाजमत में भी एक मुआहदा होता है, और बजाहिर इंसान को महसूस भी नहीं होता कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मुआहदा शिकनी जैसा कि मैंने बयान किया है झूठी ही किस्म है। मुआहदा होता है और वो बाज दफा तहरीरी, बाज दफा गैर तहरीरी। तवक्को की जाती है बाज मुलाजमों से कि जब हम तुम्हें इतनी तनख्वाह देंगे तो तुम ये काम करोगे, जब आप डेस्क से उठ के चले जाएंगे और वो काम नहीं करेंगे, जब बहुत तवा गपों में लड़ा देंगे तो झूठ तो नहीं आप बोल रहे लेकिन बदहदी जरूर कर रहे हैं, और अमली झूठ की एक किस्म है बदहदी। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको झूठ से अलग बयान फरमाया, क्योंकि इसका दायरा बाद जगह मुख्तलिफ हो जाता है। फिर एक और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई मुनाफिक की कि जब मुवाता करे, जब इख्तलाफी उमूर पर गुफ्तगू करे तो गालियां और फैश कलामी शुरू करे। फरमाया मोमिन की शान के ये खिलाफ है। और अब देखें कि नसीहत करने वालों के लिए कितना जरूरी है, एक ऐसी जमात जो नसीहत पर मामूर हो, अगर कोई उसको आगे से उससे बदसलूकी से पेश आए, उसकी बात ना माने या सख्ती करे, और ऐसी जमात जो निकली है दुनिया को नसीहत करने के लिए और उनकी इस्लाह के लिए, वो मुकाबल पर फैश कलामी शुरू कर दे तो उसका तो सारा असर बातिल हो जाएगा। इसलिए जमात अहमदिया में खा कितनी ही बदकलामी उनके मुखालिफ की जाए, जवाब में बदकलामी नहीं होनी चाहिए। अगरचे बाद मौके पर कुरान करीम इजाजत देता है इसकी, और इस्लाह के खातिर और बाज हकायक को दिलों में उतारने के लिए, लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला के वो बंदे जो मामूर हों वो खास मसाले के पेश नजर सख्ती करते हैं। जैसा कि एक मजलिस में सवाल किया गया था कि कुरान करीम में जो आता है उतुल इम्बादा दाले का जमीन, कि वो झूठा बदकरदार बल्कि हराम ज्यादा है जो मुखालिफ है। इतने शदीद इतने सख्त अल्फाज कुरान करीम में, और दूसरी तरफ कुरान करीम फरमाता है कि गाली ना दो। तो ये मुराद हरगिज नहीं कि मुसलमानों को कुरान करीम इजाजत दे रहा है कि तुम इस किस्म के सख्त लफ्ज लोगों के लिए इस्तेमाल किया करो। मामूर मिन अल्लाह को अल्लाह कह रहा है कि तेरे मुखालफों की यह हालत है, और बाज दफा बीमारी की तरफ मुतवज्जे करने के लिए बताना पड़ता है, लेकिन वो जिसका काम है जिसको मामूर किया गया है वो बीमारियों की हालत खोल कर बयान करता है, और उसके अपने उसवे पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। रोजमर्रा की जिंदगी में वो उसी तरह हौसले वाला और बर्दाश्त वाला होता है, लोग उसको गालियां दे जाते हैं और वो हौसले से बर्दाश्त करता है और लोगों को भी उसके मुकाबले पर सख्ती नहीं करने देता। हजरत मसीह मौऊद के मुतालिक आता है, एक मजलिस में आप तशरीफ फरमा थे, गालिबन यूपी से एक आदमी आया और उसने नहायत बदकलामी की, और हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम ने जब जवाब दिया तो उसने कहा मैं जानता हूं ऐसे धोखेबाजों दज्जालों को, मुझसे तुम क्या बात करते हो। सहाबा को तैश आया, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया, फरमाया हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम ने रोक दिया, बिल्कुल कुछ नहीं कहना। जब वो बात खत्म कर लेता था तो हुजूर उसका जवाब देना शुरू कर देते, यहां तक कि आखिर पर उसने कहा कि मैंने सारी जिंदगी में ऐसा हौसले वाला इंसान कभी नहीं देखा। तो ये खुदा ताला के मामूरों को जब अल्लाह ताला एक दवा के तौर पर, एक बीमारी के तजिए के तौर पर बाद हकायक बताता है तो उसे गाली नहीं कहा जाता, लेकिन उन बातों को पकड़कर आगे लोगों में उस तरह कहना ये मना है, और इसकी कुरान करीम इजाजत नहीं देता। चुनाचे कुरान करीम में इन आयात के बावजूद हरगिज साबित नहीं कि हजरत अब्दस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या आपके सहाबा ने गलियों में लोगों को यह कहना शुरू कर दिया उतुल्लिम बाला जाले का दिन। नहायत नरमी और मोहब्बत और प्यार से गुफ्तगु फरमाते थे, और इस ये चीज और मकसद की खातिर है और खुदा ताला के खास इमाम पर बयान की गई है। तो जमात अहमदिया को हरगिज गाली नहीं देनी, जितना मर्जी दुश्मन आपको गालियां दे, जितनी मर्जी फाशा कलामी से काम ले, अपने सब्र और हौसले से काम लेना है। अगर नहीं लेंगे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुनाफिक हो जाओ। अजीब इनामत मुनाफिक की बताई है, जिसका आम दुनिया की अकल से ताल्लुक नहीं है, एक गैर मामूली आरिफ बिल्ला ये सोच सकता है कि ये मुनाफ़त है। अब गौर करें कि मुनाफ़त क्यों है। मुनाफ़त इसलिए है कि मोमिन की फितरत ऐसी है जो हर एक से प्यार करती है और मोहब्बत करती है, और खुदा ताला ये चाहता है कि तुम बनी इंसान बनी नौ इंसान के लिए रहमत हो जाओ, और जो शख्स रहमत हो जाता है उसकी जुबान उसको चिरके लगाए और दुख दे ये हो नहीं सकता, इसलिए वो अपनी जात का मुनाफिक है, अपने अंदरूने का मुनाफिक है। जब वो जख्म लगाता है गैर को तो अपनी उस फितरत पर जख्म लगाना होता है जो खुदा ताला ने उसको अता फरमाई है और जिसकी उससे तवक्को रखता है। तो इसलिए दुनिया में कोई भी मुनाफिक हो हमें वो भी पसंद है, लेकिन जमात अहमदिया बहरहाल मुनाफिक नहीं होनी चाहिए। और जहां मुनाफिक की ये चार सिफात आप देखें वहीं नसीहत और मोहब्बत और प्यार के साथ इनको दूर करना शुरू कर दें, क्योंकि जिस हद तक मुनाफिकत दूर होती है मुआशरे से उस हद तक वो हक को कबूल करने के करीब आता चला जाता है। जिस हद तक मुनाफिकत बढ़ती चली जाती है उस वक्त तक वो हक को कबूल करने से दूर हटता चला जाता है। इसलिए ये इब्तदाई चार कदम हैं कौम की आखिरी इसलाह के लिए। अगर ये कदम आप नहीं उठाएंगे तो आखिरी इसलाह मुमकिन ही नहीं है। और मेरा मुखातिब एक एमडी पाकिस्तान के एमडी नहीं है, मेरा मुखातिब तमाम दुनिया के एमडी, अमेरिका का भी, अफ्रीका का भी, इंग्लिस्तान का भी, स्पेन का भी, चीन का भी, जापान का भी, क्योंकि हर मुल्क में ये चारों बीमारियां मुख्तलिफ सतह पर पाई जाती हैं। बाद जगह पॉलिश की गई है, जिस तरह कड़वी पिल देने कर दी गोली के लिए ऊपर पॉलिश कर दी जाती है मीठे की ताकि पता ना लगे। तो बात कौन हैदा कलामी करती है एक दूसरे से, लेकिन मुरस्ता जुबान में, बड़ी सजी हुई जुबान में। जैसे यूपी में जब तहजीब ने तरक्की की थी तो बड़ी तहजीब के साथ गालियां देते थे एक दूसरे को, बड़े अदब के साथ कि जनाबे वाला आपकी शान में मुस्ताफी ना हो तो मैं अर्ज करूंगा कि आप बड़े खबीस फितरत इंसान है, तो चाहे आप लपेट लें गाली को, मुरक्का कर लें, पॉलिश कर लें, मीठा बना लें, गाली तो गाली रहेगी। इसलिए जमात अहमदिया मुनाफिक मुनाफिकत की हर किस्म के खिलाफ नसीहत का जहाद करना चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो कुरान करीम आपको खुशखबरी देता है कि कुंतुम खैरा उम्मतें उखरजत लिन्नास, तुम ही वो बेहतरीन उम्मत हो जिसको मैंने जमाने की इस्लाह के लिए और उसके फवायद की खातिर पैदा किया। इससे अजीम शान मुकाम क्या हो सकता है कि एक जमात पर खुदा के प्यार की नजरें पड़ रही हैं और फरिश्ते ये तहसीन के कलमे कह रहे हैं कि हां तुम ही वो बेहतरीन उम्मत हो, हां तुम ही वो बेहतरीन उम्मत हो, हां तुम ही वो बेहतरीन उम्मत हो जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में दुनिया के फायदे की खातिर पैदा की गई। الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر